Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Narayan, 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 Narayan. Aye, hum sab Swami Ji ke Sri Charno mein pranam karte hain, vandana karte hain. स्वामी जी की बहुत बड़ी कृपा है. गत वर्ष स्वामी जी ने कठोपनिषद पर प्रवचन किया था. इस वर्ष स्वामी जी उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं. जय श्री कृष्ण.
ओम नारायण नारायण नारायण. आदरणीय प्रातस्मरणीय महामंडलेश्वर प्रेमपुरी जी महाराज जी के पावन चरणों में नमन करते हुए, आदरणीय प्रातस्मरणीय महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए, ट्रस्ट के सम्माननीय ट्रस्टी जिनका अभी अभी आप उद्बोधन श्रवण कर रहे थे, ऐसे प्रिय मधु बाबू, आदरणीय तिजोरी वाला जी, भगवान की कथा में अनवरत लीन रहने वाले पवित्र आत्मा साधक जन, श्रोता जन, बड़े ही सौभाग्य से हम लोग प्रेमपुरी आश्रम के सभागार में दैनिक सत्संग के रूप में प्रतिदिन प्रातः अनेकों महापुरुषों विद्वानों द्वारा प्रस्थानत्रयी आदि विषयों पर प्रवचन श्रवण करते रहते हैं. अन्योन्यम तत्प्रबोधनम तत्कथनम तत्चिंतनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम. श्रुति कहती है आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्याशितव्य. आत्म साक्षात्कार स्वयं को जानने की प्रक्रिया का पहला कदम वो श्रवण है. श्रवण हमारे ज्ञान का प्रथम और महत्वपूर्ण स्रोत है. हमारे पास पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं. इनमें दो इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक आंख और दूसरी कान. आंख के द्वारा बहुत सारी चीजें हम देख लेते हैं. वो देखना हमारे मन में ज्ञान की संस्कार की तरंग बनकर समाहित हो जाता है. देखना हमारे जीवन में संस्कार और स्मृति को पैदा करता है. देखना तो समाप्त हो जाता है, देखने की प्रक्रिया बड़ी क्षणिक है. हमने आंख खोली, सामने पदार्थ था, देखा, देखने की क्रिया खत्म हो गई. देखने की क्रिया, सुनने की क्रिया, ऐन्द्रिक जो भी क्रियाएं बड़ी क्षणिक हैं, बहुत क्षणिक. आंख खुली, देखा, देखने की प्रक्रिया खत्म हो गई. हमने नजरें घुमाई, देखना खत्म हो गया. एक शब्द हम सुनते हैं और दूसरे शब्द को जब सुनने लगते हैं तो पहले शब्द के श्रवण की प्रक्रिया खत्म हो जाती है. लेकिन वो देखना हमारे मन पर एक अमिट छाप छोड़ देता है, उसको कहते हैं हम संस्कार. हमने देखा, हमने सुना, सत्संग हुआ, लेकिन वो सत्संग वो देखना और सुनना हमारे मन में संस्कार और स्मृति को पैदा करता है और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। फिर संस्कार और स्मृति ये हमारे जीवन को व्यवहार में ले जाता है। अभी आप यहां सत्संग में आए, उसके मूल में संस्कार और स्मृति ही है। आपको मालूम है 7:30 बजे प्रत्येक साधुओं का प्रवचन होता है, सुना या आपने देखा पढ़ा और वो मन में संस्कार बन गए और वो संस्कार ने स्मृति निर्मित कर दी। आपने सुबह आंख खोली और वैसे ही आपके मन में स्मृति जगना शुरू हो गई, संस्कारों ने स्मृति को जगाया। आपको याद आने लगी कि प्रेमपुरी आश्रम जाना है और बहुत दूर से, यहां कई लोग तो बहुत दूर से आए हैं, ये हमारे श्रोता लोग गीताबेन दिलीप भाई वड़ाला से आए हैं, आतेदत्त ने। अब इतना दूर से उन्हें आने के लिए सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ा होगा, उनके मन में संस्कार ने स्मृति जगा दी होगी और उस स्मृति रास्ता बन गई और यहां तक पहुंच गई। संपूर्ण व्यवहार आचरण का जो मूल है वो स्मृति है और स्मृति का मूल संस्कार और संस्कार का मूल है देखना या सुनना। आत्मा वारे श्रोतव्यो, श्रुति ने कहा कि हम आत्मा को देख नहीं सकते हैं, आत्मा को हम सुन सकते हैं क्योंकि वो अतींद्रिय पदार्थ हैं और जो अतींद्रिय पदार्थ होता है उसको आंख से देखना संभव नहीं है। वो स्वसंविद्य आत्म तत्व की अनुभूति केवल श्रद्धिक गम्य है अथवा विशुद्ध अंतकरण के द्वारा उसकी अनुभूति संभव है। श्रुति ने कहा मनसा एव इदम आप्तव्यम, बाह्य इंद्रियों के द्वारा आत्म तत्व का दर्शन संभव नहीं है। सर्वप्रथम उपाय के रूप में श्रुति ने कहा आत्मा वारे श्रोतव्य, सुनो और सुनने के बाद संस्कार और स्मृतियां बनेगी। अपने घर में जाएं और मनन करें, मनन मन से, श्रवण तन से, कान से और मनन मन से। आंख बंद कर आप अपने घर में एकांत में जो सुना है, जो स्मृतियां बनी, अब उनको दोहराना है। ये चरित्र है, आचरण है, श्रवण आचरण में ले जाने के लिए श्रुति कहती है। श्रवण केवल श्रवण के लिए नहीं है, वो आचरण के लिए है और ये जो निधिध्यासन है वो आचरण है, प्रैक्टिकल है, प्रयोगात्मक। वो बात अब मन तक पहुंची, केवल कान तक नहीं रही, जो हमने सुना वो हमारे मन तक पहुंचा। ये श्रुति जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण श्रुति है, ये जो हम सुने वो हमारे मन तक पहुंच जाए क्योंकि मन में जो चीज पहुंचती है वो प्रभावी होती है। कान से सुना और वो वहीं विदा हो गई चीज, हमारे मन तक नहीं पहुंची। जैसे भोजन हम कर रहे हैं केवल मुख में रह जाए, उदर में न समाविष्ट हो तो शरीर को लगेगा ही नहीं वो। इसलिए श्रुति ने कहा मन तक पहुंचे हमारा श्रवण और जब मन तक पहुंचा वो बुद्धि में प्रवेश करेगा। अब ये निधिध्यासन, मनन के बाद नंबर आता है निधिध्यासन का। निधिध्यासन का अर्थ है अब निश्चय हो गया है, अब वो निश्चित हो गया, अब उसको आप हिला नहीं सकते हैं। आत्म तत्व का निश्चय हो गया, मैं आत्मा हूं, ये शरीर दृश्य है, नश्वर है, मेरे से बिल्कुल अलग है, मैं आत्मा हूं। इस आत्म तत्व का जो निश्चय निरंतर, उसको बोलते हैं निधिध्यास। अनात्मा कार वृत्ति का परित्याग कर आत्माकार वृत्ति की जो निरंतर स्थिरता है उसको बोलते हैं निधिध्यासन। और उसके बाद फिर श्रुति ने कहा आत्मा वारे दृष्टव्या, वो आत्मदर्शन फिर चित्त वृत्ति की ब्रह्माकारिता अखंडाकारिता, और उसके बाद फिर संपूर्ण संदेह आदि मिटने के बाद आत्मतत्व का साक्षात्कार। तो आप लोगों का जो दैनिक सत्संग है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये बात इसीलिए कह रहा था, ये मननात्मक है, निधिध्यासनात्मक सत्संग है। कुछ समय के लिए हम लोग सुनते हैं 365 दिनों में भागवती कथा आ गई साप्ताहिक की, अथवा पाक्षिक की आपने सुना, लेकिन उसमें निरंतरता नहीं है, नैमित्तिक श्रवण उसको बोलते हैं। और हम लोगों का जो यहां है वो नित्य श्रवण है। साप्ताहिक के रूप में हम भागवत श्रवण कर रहे हैं या कोई विशेष एक दो दिन के प्रसंगों को श्रवण कर रहे हैं, वो नैमित्तिक श्रवण है। जैसे आपने एकादशी की अलग ढंग से कुछ बना के खाया, व्रत त्यौहार विशेष उत्सवों में आपने अलग खाया, वो अलग स्वाद है वो। लेकिन आप प्रतिदिन सुबह से शाम तक भोजन करते हैं, प्रतिदिन भोजन करते हैं, वो जीवन है। प्रतिदिन जो भोजन है वो जीवन है, आपको खाना अनिवार्य है। इसलिए नैमित्तिक की अपेक्षा जो नित्य होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये हम लोग जो सुबह 7:30 से 8:30 बजे जो नित्य सत्संग नित्य श्रवण है, और इसीलिए शास्त्र ने कहा तत् श्रवणम तत् कीर्तनम अन्योन्यम तत् प्रबोधनम। और पतंजलि ने एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया, निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि। उन्होंने कहा कि जो निरंतर है, निरंतर दीर्घकाल, ये तीन शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। साधना को आगे बढ़ाने के लिए, साधना की सिद्धि को पाने के लिए ये तीन सूत्र। किसी को साधना के बारे में पूछना हो तो ये तीन सूत्र दिमाग में आ जाए तो पूछने की जरूरत नहीं है। हम आगे कैसे बढ़े, सिद्धि को कैसे पाए? उन्होंने कहा दीर्घकाल, दीर्घकाल माने लंबे समय तक, और निरंतर उसमें अंतर ना हो, दीर्घकाल लेकिन उसमें अंतर ना हो। नहीं तो सत्संग कितने साल से कर रहे हैं, बोले 20 साल से। प्रतिदिन जाते हैं, बोले नहीं कभी कभी जाते हैं। तो उसमें निरंतरता नहीं है, दीर्घकाल तो है लेकिन निरंतर नहीं। बोले दीर्घकाल हो और निरंतर, लेकिन उसमें यदि श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो, प्रेम ना हो तो भी नहीं चलेगा। इसलिए पतंजलि ने कहा कि सत्कारा सेवितो, सत्कार माने प्रेम पूर्वक, रस आए उसमें, आनंद आए। जहां पर भी सत्कार, जहां पर श्रद्धा होती, विश्वास होता है, वहां रस होता है। यहां श्रद्धा सत्कार माने प्रेम है और कुछ नहीं है। जो लगाव है ना वही तो प्रेम है, वही तो सत्कार है, वही स्वागत है। सत्संग में यदि प्रेम है तो रस होगा, आनंद होगा, और वो रसानुभूति और निरंतरता को पैदा करेगी। वो रसानुभूति और हमें लंबे सत्संग में ले जाएगी। और रसानुभूति ना हो तो आदमी सोचेगा चलो अच्छा पिंड छूटा। तब दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, तब हमारा जो सत्संग है, साधना है, वो दृढ़ भूमि हो जाती है। दृढ़ भूमि, हमारी भूमि दृढ़ होती है। ऐसा सब अध्यात्म की जो भूमि है वो दृढ़ हो जाती है, फिर सत्य हमारे जीवन में रचने लगता है, बसने लगता है, सारे संदेह मिटने लगते हैं। उस समय सचमुच ऐसा लगने लगता है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। ये सारी जो प्रतीतियां हैं ये प्रतीति मात्र, प्रातितिक हैं। इसीलिए नित्य सत्संग का बहुत महत्व। प्राचीन समय में इसका एक भाव था। बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े आचार्य ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में स्वाध्याय किया करते थे, प्रस्थानत्रयी, बड़े बड़े ग्रंथ, और वो निरंतरता। और ऐसा नहीं है कि केवल ये साधु की चीज है, जहां मनुष्य हैं ये मानवीय जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है वेदांत। वेदांत केवल किसी एक व्यक्ति की चीज नहीं है, कोई साधु है, महात्मा है, उसके लिए ऐसा नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि यहां प्रांत, जाति, वर्ण, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये मानव मात्र के लिए निर्विवाद सत्य वेदांत का श्रवण है। अब यह जो कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली, प्रथम वल्ली को आप पिछले बार श्रवण कर चुके हैं, मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूं। प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। जितने भी आपके उपनिषद हैं, सारे उपनिषद अच्छे हैं, फिर भी कठोपनिषद की अपनी एक अपूर्वता है, और इस अपूर्वता का मूल है आपके बालक नचिकेता। नचिकेता का जीवन, उनकी शैली बहुत अद्भुत है, और बहुत बड़े बालक नहीं, तम है कुमार संतम, ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। बोले कुमार है, कुमार, और कुमार का अर्थ होता है मार शब्द है ना, मार, मार का अर्थ होता है कामादि विकार, और कु शब्द का अर्थ होता है तिरस्कृतम। जिन्होंने अपने जीवन से कामादि विकार को, विकारों को तिरस्कृत कर दिया है, निकाल के बाहर फेंका है, ऐसा बालक है कुमार संतम। दक्षिणासु नियमानासु, उन्होंने देखा कि पिताजी गायों का दान कर रहे हैं, 5 वर्ष का बालक, और अद्भुत बात उनके दिमाग में आ जाती है। बड़े बड़े लोगों के दिमाग में जो बात ना आए, कई बार बहुत छोटे से बच्चों के दिमाग में भी बात आ जाती है। ऐसे ही हुआ ना, जब एक बार कोई ब्राह्मण सम्राट युधिष्ठिर जी महाराज जी के पास आके प्रार्थना करने लगा, हमें कुछ धन चाहिए। कोषागार के द्वार बंद हो चुके थे। उन्होंने कहा कि भाई आपको दान देना है, छोटी मोटी चीज से तो काम नहीं चलेगा, कोषागार बंद हो चुके, रात्रि का समय है, और आप प्रातः आ जाए तो मैं आपको जितना चाहे उतना धन दे दूंगा। उनके दिमाग में बात नहीं आई, और जिनका दिमाग से कोई मतलब नहीं, आप जब पांचों पांडवों के बारे में दिमाग की बात करते हैं तो आपको यही तो दिखते हैं, युधिष्ठिर जी महाराज, अर्जुन, भीम का नंबर नहीं उसमें। आप जब मारने, भिड़ने, खाने की बात आती है तो आपको भीम की बात याद आती है। उन्होंने उस समय कुछ नहीं बोला, शायद बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन के लिए अच्छा अवसर उपस्थित हो गया था। भीम ने जाकर के वहां एक ढोल रखा था, कोई अद्भुत घटना हो जाए, आश्चर्यजनक, आनंदपूर्ण राज परिवार की, तो ढोल बजाया जाता था। बड़े बड़े जोर से ढोल बजाने लगे भीम दादा, सबको आश्चर्य हुआ, राज परिवार में, राजमहल में ऐसी कौन सी अद्भुत घटना घटी, क्या किसी का जन्म हुआ, कहीं विजय प्राप्त हो गई, क्या हुआ। सारे लोग एकत्रित हो गए, भीम दादा के पास पहुंचे, बोले आप क्यों बजा रहे हैं। उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला, आज एक बहुत आश्चर्य की घटना घटी, आज हमारे सम्राट को मालूम पड़ा कि कल तक जीवित रहेंगे वो, कल तक जीवित रहेंगे, ये आज हमारे सम्राट को मालूम पड़ा, इससे ज्यादा आश्चर्य की घटना क्या हो सकती है। कल का भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं, कल की बात छोड़ो, और हमारे सम्राट को कल का भरोसा है। उन्होंने कहा है ब्रह्म देवता को, ब्राह्मण को, कल आना, और हमें यह भी पता चला है, हमारे सम्राट को इसका भी भरोसा हो गया कि कल तक उनके पास ये संपत्ति रहेगी, और उन्हें यह भी पता चला है कि कल तक लेने की भावना भी उस ब्राह्मण में रहेगी, सम्राट आ गए युधिष्ठिर जी महाराज। उन्होंने सुना ये तीनों चीजें, समझ के बात को क्या कहना चाह रहे थे, समझ गए युधिष्ठिर जी महाराज सचमुच कल का भरोसा नहीं है। और मैंने उन्हें कहा कि कल आओ, मेरे को तो आज ही करना चाहिए था दान, कोष के द्वार खोल देते, उसमें क्या था। और बात सही है, हम कल तक देने लायक रहेंगे कि भी नहीं, ये बात मालूम है, भीम को मालूम है। क्यों? कई बार राज्य हार चुके हैं ना, राज्य हार चुके हैं, हाथ में आया हुआ राज्य हार चुके हैं, और हारने के लिए कितना समय लगा, पल में हार गए। और जो लेने के लिए आज तैयार हैं, कल यदि दूसरे से ले ले और उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाए तो भी आप दान नहीं कर सकते, आपका संकल्प झूठा होगा। फिर एक बहुत बड़ी बात जो अर्जुन के दिमाग में नहीं आई, जो युधिष्ठिर जी महाराज जी के भी दिमाग में नहीं आई, वो बात भीम के दिमाग में आई। ऐसे कम प्रसंग हैं, लेकिन कई बार छोटे आदमी के मन में भी बहुत ऊंची बातें आ जाती हैं और बड़ा आदमी वंचित रह जाता है उस समझ से। ऋषि उद्दालक गायों का दान कर रहे हैं और उनके मन में लोभ है, अपने पुत्र के प्रति मोह है, और वो सोच रहे थे कि सारी सभी गायों का दान कर दूं तो मेरे पुत्र के लिए कौन सी गाय बचेगी। उन्होंने क्या किया, अच्छी अच्छी गायें छांट ली और अपने बच्चों के हिस्से में कर दी। और जो बूढ़ी थी, अनुपयुक्त थी, जो दूध नहीं देने वाली थी, लूली लंगड़ी मरणासन्न ऐसी गायों को अलग कर वो गाय दान कर रहे थे। और वो बात दिमाग में आई बालक नचिकेता के, इसलिए अश्रुति ने कहा कुमार संतम, माने छोटा होते हुए भी सोचने लगे, आनंदा नाम ते लोका तांस गच्छति ताददत पीतो दका जगधत्रणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नाम ते लोका तांस गच्छति ताददत। जिन्होंने अंतिम बार जल पी लिया है, अब जल पीने के लिए भी उसमें ताकत नहीं है, अंतिम बार खाना खा चुकी हैं, तृण खा चुकी हैं, अब खाने की शक्ति नहीं रही, दुग्ध दोहा दूध निकाल लिया गया है, अभी संभावना भी नहीं है दोबारा दूध आने की, बूढ़ी हो गई। निरिंद्रिया माने वांझ है, अब वो बछड़े देने के लिए भी उसमें शक्ति नहीं रही। ऐसे गायों का दान यदि मेरे पिताजी करेंगे तो बोले आनंदा न नंदा इति आनंदा, दुखपूर्ण लोगों को चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो उनके मन में आसक्तियों ने घर कर रखा है, संन्यास लेने वाले हैं, ये संन्यास की तैयारी थी उनकी। संन्यास लेने के पहले त्याग का अभ्यास, अपने यहां बहुत एक महत्वपूर्ण बात, वानप्रस्थ कहते हैं, वानप्रस्थ संन्यास नहीं है, ये संन्यास की तैयारी है, प्रशिक्षण है। त्याग का प्रशिक्षण माने वानप्रस्थ जीवन है, क्योंकि अभ्यास भी तो करना पड़ेगा ना छोड़ने का, और एक साथ ही आप छोड़ दे तो वहां क्या करोगे आप। बहुत सारी आदतें हमारे जीवन में लगी हैं और हम संन्यास ले तो आदतें आपको पुनः व्यवहार में ले आएगी। संन्यास लेने के बाद भी आदमी आदतों से मजबूर होगा, इसलिए उन आदतों को छोड़ने का अभ्यास वानप्रस्थ है। और उद्दालक ऋषि अभ्यास कर रहे हैं छोड़ने का अभ्यास, ये जो यज्ञ है ना, एक छोड़ने का अभ्यास, संन्यास में अपने मन को ले जाने के लिए त्याग कर रहे हैं। और दान जो है गहरे अर्थों में हमें त्याग में ले जाता है। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, कुछ पैसे चढ़ाते हैं, वो त्याग है, वो दान बिना त्याग संभव नहीं है। और ये शास्त्र आपको दान के द्वारा वैराग्य में ले जाना चाहता है, छोड़ने का अभ्यास है। आपने एक रुपया छोड़ा तो दस भी छोड़ सकते हैं, दस छोड़े तो सौ भी छोड़ सकते हैं, सौ छोड़े तो आप हजार भी छोड़ सकते हैं। ये धीरे धीरे हमारे मन को वैराग्य मिले जाने के लिए ही शास्त्र ने कहा दान करो। दान का अर्थ आप ये मत सोचना कि दान करने से आपको स्वर्ग मिलेगा, ये तो केवल प्रक्रिया है, वैराग्य में ले जाने की प्रक्रिया, समर्पण में ले जाने की प्रक्रिया, ये छोड़ने की प्रक्रिया, छोड़ने में ले जाने की प्रक्रिया है। सोचने लगे बालक नचिकेता कि मेरे पिताजी प्रारंभ में ही फेल हो गए, त्याग और वैराग्य में मन को ले जाना था, लेकिन क्या किया इन्होंने, मेरे आसक्ति में अनुपयुक्त गायों का दान कर रहे हैं, अच्छी अच्छी गायें मेरे लिए मेरे हिस्से में रख रहे हैं। चलो, आसक्ति का केंद्र कौन है, मैं हूं, और यदि मेरा ही दान हो जाए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि दान होने के बाद दाता का अधिकार नहीं रहता है। दान का अर्थ होता है ग्रहीता का स्वत्व निर्मित करना, दान का अर्थ होता है कि इदम न मामा, ये मेरा नहीं है, माने दाता की ममता का त्याग करना ही तो दान है, और लेने वाले की ममता का निर्माण करना। इन्होंने सोचा कि मेरे ऊपर जो ममता है उस ममता को खत्म कैसे किया जाए, तो ममता को खत्म करने का एक ही उपाय है, और वो उपाय है दान, मेरा दान हो जाए। आपके पास 10 रुपया है, मंदिर में आप भगवान के उस पेटी में डालने तक ही उस पर आपका अधिकार है, और उस पेटी के अंदर जैसे गए पैसे, अब आपका उस पर अधिकार नहीं, पहले देखना वो 100 का है कि 1000 का है। आप बाद में बोले कि अरे गलती से 1000 चढ़ गया, नहीं, अब वो गया, वो इदम ना मामा स्वाहा हो गया है। ये स्वत्व निर्मित करना है, लेने वाले का स्वत्व निर्मित करना है, देने वाले के स्वत्व को समाप्त करना है, ममता का त्याग। बालक नचिकेता ने सोचा इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती है, तो मैं अपने पिता को बोल दूं कि मेरा दान कर दो, मेरा ही दान कर दो। उन्होंने बहुत प्रेम से अपने पिता को बोला, कस्मे माम दासिसी, पिताजी आप मेरे को किसको दान कर रहे हो, आप मेरे को किसको दान करोगे, कस्मे माम दासिसी। पिता को एक झटका लगा, सोचने लगे ये दान और सबसे प्रिय वस्तु है, पुत्र सबसे प्रिय वस्तु है, और वो वस्तु भी तो नहीं है। आप सोने का दान करो, एक वस्तु है, बहुत सरल है, धन का दान, भूमि का दान, वस्त्र का दान, बहुत सरल है, लेकिन अपने पुत्र का दान, ये तो बहुत बहुत दुखद चीज है, पुत्र का त्याग बहुत दुखद चीज है। दान सुन के एकदम अंदर से दुखी हो गए, झल्ला पड़े, कुछ बोले नहीं, अरे ये क्या बोल रहा है, कस्मे माम दासिसी। लेकिन वो बात दिमाग में नहीं आई उन्हें, ये क्यों कह रहे हैं, ये बात दिमाग में नहीं आई। द्वितीयम तृतीयम तम हो आज, जो अंदर की चीज थी ना, उत्कटता, हमारे अंदर जो उत्कटता तत्परता हो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियम, जहां श्रद्धा हुई वहां लिखा हुआ श्रद्धा अविवेश, श्रद्धा का आवेश आ गया था उनमें, आदमी में श्रद्धा होना और श्रद्धा का आवेश आना, इसमें अंतर है। यदि श्रद्धा है तो श्रद्धा पर हमारा नियंत्रण है, हम चाहे तो कर भी सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, श्रद्धा पर हमारा नियंत्रण है। लेकिन श्रद्धा का आवेश हमारे ऊपर आ जाए तो फिर श्रद्धा हमारे हाथ में नहीं रहती है, श्रद्धा के हम हाथ में चले जाते हैं। जैसे भूत का आवेश आ गया, आप सुनते हैं ना भूतावेश, किसी देवी का आवेश आ गया, किसी देवता का आवेश आ गया, तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खो देता है, व्यक्ति फिर जैसा देवता चाहता वैसा वो करता जाता है, वैसा बोलता जाता है, वैसा नाचते जाता है, ऐसे श्रद्धा का आवेश हमारे ऊपर हो जाए। श्रद्धा का आवेश होने के बाद हमारा मन हमारे हाथ में नहीं रहता है, श्रद्धा के हाथ का खिलौना बन जाता है, और उसके बाद फिर वो श्रद्धा उसे वो सारी चीजें करवा लेती हैं जो श्रद्धा चाहती है। बालक नचिकेता के मन में श्रद्धा का आवेश हो गया, अब उनका मन उनके हाथ में नहीं है, श्रद्धा आविवेश हो गया। और उसके बाद फिर पहली बार बोला, बेचैन हो रहे हैं, बहुत बेचैन हो रहे, अब क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं पिताजी को कि ये क्या कर रहे हैं, ये अनुचित गायों का दान कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, इधर उधर देख रहे थे बालक नीचे को, कैसे समझाऊं। फिर उन्हें दूसरी बार बोला, कस्मे इमाम दास्य सिंह,